चरणदास चोर नाटक, लेखक हबीब तनवीर, प्रकाशन वाणी प्रकाशन, 21A दरियागंज, नई दिल्ली, 110002 द्वारा प्रकाशित। नाटक के पीछे बहुतेरी कहानियाँ। इस नाटक के पीछे एक नहीं बहुतेरी कहानियाँ हैं, चूंकि चरणदास चोर एक क्लासिक का दर्जा हासिल कर चुका है। ये कहानियाँ भी एक इतिहास की हैसियत रखती है। इन कहानियों का सिलसिला चोर की हमारी प्राचीन परंपराओं से मिलता है। शास्त्रों में हमारे यहाँ एक चोर शास्त्र भी है। मुनिराम भद्र विरचित के संस्कृत नाटक प्रबुद्ध रोहिणीय का नायक एक चोर है और उसकी अजीबो गरीब जिंदगी का चित्रण चोर शास्त्र पर ही आधारित है। शूद्रक के शाहकार मृच्छकटिक में एक महत्वपूर्ण पात्र सार्वलिक है, जो चोर भी है, प्रेमी भी है और आर्यतक गोपालक के राजनीतिक दल का लीडर भी है। वह जब चारुदत्त के घर में चोरी के लिए सेंध लगाना चाहता है तो पहले विचार कर लेता है कि जैसी गोल हो या कमल के फूल की तरह या फिर एक मटके के आकार की सेंध बनाऊं। इसका भी सूत्र चोर शास्त्र से संबंधित है। सर्वलिक की बनाई हुई सेंध देखकर चारुदत्त को अपने घर चोरी का ख्याल बाद में आता है। पहले वो चोर की कला देखकर दंग रह जाता है और उसकी चाबुक दस्ती की प्रशंसा करता है। आर्यक और सार्वलिक जो पात्र हैं, जिनका जिक्र हजारी प्रसाद द्विवेदी के पुनर्नवा में मिलता है, उन्होंने अपने उपन्यास में बताया है कि इन पात्रों का सिलसिला प्राचीन काल के साहित्य में मिलता है। मृच्छकटिक का सर्वलिक देश में क्रांति लाता है और राजा पालक के अत्याचार को खत्म करके उसकी जगह ग्वाले आर्य को राज सिंहासन पर स्थापित कर देता है। पैराग्राफ चेंज। चोर की राजस्थानी लोक कथा पर नाटक तैयार करने का ख्याल मुझे सबसे पहले 1974 में आया। विजय दान देथा कोष्टक में, जिन्हें मित्र बिज्जी कहते हैं कोष्टक बंद, ने मुझे यह कहानी जवानी सुनाई थी। बस इस कहानी ने मेरे दिमाग में जड़ पकड़ ली। उस वक्त तक विजयदान ने अपनी जमा की हुई लोक कथाएं केवल राजस्थानी भाषा पेज 6 में छपवाई थी। इनका अनुवाद उलझन के नाम से बाद में छपा। जिला जोधपुर के गांव बोरुंदा में, जहां कोमल कोठारी और विजयदान का रूपायन संस्थान है, मैं एक महीने रहा। ये 1974 की गर्मियों का जमाना था। चोर की लोक कथा पर जब मैं बोरुंदा नाट्य शिविर में नाटक तैयार करना शुरू किया तो पहले 4 दिन के अंदर ही मेरी योजना फेल हो गई। इन 4 दिनों में बोरुंदा में बहुत सी घटनाएं घटी। साफ निकले, मोनिका बीमार पड़ गई और सबसे बड़ी बात ये कि कहानी के प्रति मेरा उत्साह खत्म हो गया। वर्कशॉप कोई सी हो, कहीं भी हो, मैं अपनी मंडली के खास खास कलाकारों को अपने साथ जरूर ले जाता हूँ। कभी 4-5, कभी ज़्यादा कलाकार और कभी पूरी मंडली साथ गई। ये जरूरी नहीं कि वह इसमें शिरकत करे। ऐसे मौक़ों पर कभी महज देख सुनकर तजुर्बा हासिल करना ही उद्देश्य होता है। शिरकत भी करते हैं, जैसे हरियाणा की श्वांग वर्कशॉप में, जैसे उड़ीसा के प्रहलाद नाटक वर्कशॉप में। यहाँ उद्देश्य ये था कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदले, यानी हमारे कलाकार की अदाकारी से नए कलाकार सीख हासिल करें। अंत के प्रोडक्शन में नया थिएटर के कलाकारों की कोई जगह नहीं होती। उस वक्त तक वो महज दर्शक की हैसियत में आ जाते हैं। मंच पर इलाकाई कलाकार ही उतरते हैं, लेकिन उसके बारे में विस्तार से लिखने का ये अवसर नहीं, आगे कभी। बोरुंदा में भी चुने हुए 4-5 कलाकार साथ थे। आमतौर पर खालिस घी में पके हुए ठेठ राजस्थानी खा रहे थे, जिनकी उन्हें आदत नहीं थी। छत्तीसगढ़ी आदतन आमतौर से दोनों वक्त चावल खाते हैं, जो वहाँ मिलता नहीं था। सुबह हाजत रफा, कोष्ठक में शौच आदि करने हम सब बाहर खेतों में निकल जाते थे, जिसकी बहरहाल सबको आदत थी। एक दिन सुबह सुबह जो निकले तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप मिला। कुछ लोग लाठी लेकर निकले, सांप को लाठी से कुचलकर मार दिया गया। कोमल दा को जब मालूम हुआ तो कहने लगे, मारा क्यों? यहाँ बहुत सांप निकलते हैं लेकिन हम उन्हें मारते नहीं। उन्होंने हमें सांपों के बहुत से किस्से सुनाए, कहा कि सांप को अगर कोई मार देता है तो उसका जोड़ा बदला लेने की फिराक में घूमता है और मौका पाने पर बदला जरूर लेता है। सुनते हैं मरे हुए सांप की आंखों में मरने वालों की छाया जम कर रह जाती है, बस उसी को देखकर उसका जोड़ा उस व्यक्ति को पहचान लेता है। इस सिलसिले में उन्होंने एक अजीबोगरीब किस्सा सुनाया। पेज 7। एक आदमी ने एक नाग को मार दिया। नागिन उसे ढूंढती रही। वह आदमी डोल लेकर पाने लाने हर रोज कुएं पर जाया करता था। उन्होंने वह कुआं भी दिखाया और बताया कि बस नागिन, यहाँ कुएं की मुंडेर पर जो पीपल का एक पौधा नजर आ रहा है, वहाँ दरार में छुप गई, और जब वह आदमी पानी लेने कुएं पर पहुंचा तो उसे डस लिया। आदमी ने वही दम तोड़ दिया। कोमल दा ने बताया कि ब्राह्मण का जो अंतिम संस्कार होता है वही नाक का होता है। तुम उस मरे हुए सांप को जला दो। उसी दिन हमारे कमरे में भी एक नाग निकल आया। लोग डर गए, भागकर उस मरे हुए सांप को उठाया, उसकी चिता बनाई और बड़े एहतमाम से उसे जला दिया। पैराग्राफ चेंज। उसी अरसे में मोनिका को बुखार आ गया और पहले 4 दिनों में दवा के बावजूद वह कम नहीं हुआ बल्कि कायम रहा। कोमल कोठरी उन्हें मोटर गाड़ी में बिठाकर अपने घर जोधपुर ले गए। वहाँ डॉक्टर का इलाज चलता रहा। कोमल दा के परिवार के लोग उनकी देखभाल करते रहे। इस तरह 1 महीना बीत गया। कोमल दा रोजाना उनकी कैफियत मुझे बताते रहे। मेरी वर्कशॉप खत्म भी हो गई पर मोनिका का बुखार नहीं उतरा। बिल आखिर हम दिल्ली वापस आए तो मोनिका को मैंने वेलिंगटन अस्पताल में दाखिल करा दिया। डॉक्टर करौली, जो दिल की बीमारी के इलाज माहिर थे, उनकी देखभाल करते रहे, उन्हें तपेदिक की दवाइयाँ देते रहे। आखिर चंद हफ्तों में वह स्वस्थ होकर घर गई। पैराग्राफ चेंज। इस सिलसिले का अंत भी दिलचस्पी से खाली न हो, चुनाच उसे यही बयान कर देना मुनासिब है। हुआ ये कि कुछ बरस बाद मोनिका का किसी मामूली सी बीमारी के सिलसिले में हम किसी और डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे। इलाज के सिलसिले में जब मरीज की मेडिकल हिस्ट्री बताई गई और कहा गया कि कुछ साल पहले इन्हें तपेदिक हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा, तपेदिक हो ही नहीं सकता, ये गलत इलाज हुआ। खैर, वो जमाना भी बीत गया। फिर चंद बरसों के बाद इत्तफाकन डॉक्टर करौली मुझे मिले तो मैंने उन्हें बताया कि एक डॉक्टर कह रहा था कि मोनिका को तपेदिक शायद न हुआ हो। तो डॉक्टर करौली कहने लगे, ये किसने कहा कि उन्हें तपेदिक था? तपेदिक उन्हें नहीं था, इलाज से वो अच्छी हो गई। बस अब इससे क्या मतलब कि उन्हें क्या बीमारी थी? हम लोग कभी कभी जब बीमारी का पता नहीं लगा पाते तो बजाय रिसर्च में समय बर्बाद करने के हर तरह की दवाएं देकर आजमाते रहते हैं। यही हुआ मोनिका के साथ भी। दूसरी तमाम दवाओं से उनकी तबीयत में फर्क नहीं आया। जब पेज 8, तपेदिक की गोलियां दी तो उनका स्वास्थ्य ठीक होने लगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें तपेदिक था। अब अच्छी है ना, बाकी फिक्र छोड़ो। पैराग्राफ चेंज। बोरुंदा में इन तमाम घटनाओं के बावजूद मैं काम करता रहा, लेकिन नया थिएटर के कलाकारों के इम्प्रोवाइजेशन से भी अगमराज खिलाड़ी के कलाकारों में कोई फर्क आता नज़र न आया। मैंने कुछ दिन उनके अपने खेल दिखाने में लगा दिए थे। उनके स्टॉक में से अमर सिंह राठौर और राजा हरिश्चंद्र जैसे नाटक देखे, उनमें किसी में कोई जान नज़र न आई। मैंने अगमराज से पूछा, इन नाटकों की कहानियाँ सभी लोग जानते हैं, इनमें कोई नवीनता का पहलू भी नहीं है। फिर भी तुम इन नाटकों को लिए सारे हिंदुस्तान में फिरते हो और लोग उन्हें देखते रहते हैं, आखिर क्यों? तुम्हारे नाटकों की सफलता का राज क्या है? अगम राज ने बताया, कहानी देखने कौन आता है? दर्शक तो हमारे गाना सुनने आते हैं। फरमाइश पर फरमाइश होती रहती है, हम उन फरमाइशों पर फिल्मी गाने सुनाते रहते हैं और रात बीत जाती है। आज तक किसी नाटक की कहानी अंत तक हम नहीं दिखा सके हैं। पैराग्राफ चेंज। हरियाणा के स्वांग वर्कशॉप में एक गांव के आदमी ने मुझसे एक बहुत पते की बात कही। उसने कहा, साहब, दर्शक तीन प्रकार के होते हैं, सूरमस्त, तालमस्त और हालमस्त। सूरमस्त वह जो गाना सुनने आते हैं, और गाने वाला चाहे बेताल हो, अगर सुरीला है तो वह जमे रहेंगे। तालमस्त वह जो ताल में झूमते हैं, गाने वाला चाहे कितना ही बेसुरा हो, कंसुरा हो, लेकिन अगर ताल में है तो टलेंगे नहीं, सुनते रहेंगे। तीसरा हालमस्त, ऐसा आदमी नशे में झूमता हुआ आता है और चाहता है कि रात भर कुछ न कुछ हंगामा होता रहे। उसे इससे मतलब नहीं कि गवैया बेसुरा है या बेताल, उसे महफिल चाहिए जो जमी रहे। वह जब तक जमी है वह भी जमा है, वह उखड़ी तो वह भी उखड़ा। पैराग्राफ चेंज। गोया अगमराज भी यही कह रहे थे। मैंने उनसे कहा, हम चाहते हैं कि नाटक ऐसा होना चाहिए जिसमें दर्शक लगातार इस सोच में पड़ा रहे कि अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा। चुनाच, हम तुम्हारे नाटक में परिवर्तन करने के बजाय एक नई कहानी पर नाटक खड़ा करना चाहेंगे। हमने बिज्जी की सच्चाई की विरासत शीर्षक वाली कहानी के आधार पर नाटक की तैयारी शुरू की, मगर 4 दिनों के अंदर अंदर हमारी सब कोशिशें फेल हो गई। इसका मुख्य कारण यह था कि ख्याल एक म्यूजिकल शैली है, संगीत प्रधान है, इस प्रकार का ऑपरा है जिसमें गानों का और नाच का महत्व संवाद की तुलना में कहीं ज्यादा है। जैसे पेज 9, मध्य प्रदेश का माच, हरियाणा का स्वांग, उड़ीसा का प्रहलाद, उत्तर प्रदेश की नौटंकी आदि। मैंने देखा कि इस पार्टी में एक से बढ़कर एक गाने वाले और नाचने वाले तो मौजूद थे, एक्टर कम थे, बल्कि सिरे से थे ही नहीं, सिवाय एक आदमी के, पखराज। पखराज एकमात्र एक्टर था, और ऐसा कि जिसमें अभिनय की क्षमता कूट कूट कर भरी थी। पखराज बेहतरीन कॉमेडियन भी था, बाकी कलाकार संवाद, गति और अभिनय में कमजोर थे, और मुझे जरूरत थी एक से ज्यादा अभिनेता की। चुनौच, मैंने उस कहानी पर नाटक बनाने का ख्याल छोड़कर एक दूसरी राजस्थानी कहानी उठा ली, ठाकुर रो रुशनो। ये भी विजयदान ही ने सुनाई थी। इसमें एक अभिनेता से काम चल गया क्योंकि सारी कहानी मूल रूप से एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, बाकी और भूमिकाएं अभिनय की दृष्टि से छोटी छोटी थी। गानों और नाच के जरिए पात्र कहानी को आगे बढ़ाते थे। नाटक का नाम मैंने बदलकर ठाकुर प्रीतिपाल सिंह रख दिया। मैंने वही सबक बोरुंदा में दूसरी बार सीखा जो एक साल पहले 1973 में रायपुर नाचा वर्कशॉप में पहली बार सीखा था, जिसके नतीजे में गांव के नाव ससुरार मोर नाव दामाद जैसा नाटक निकलकर आया था। सबक ये था कि कभी किसी वर्कशॉप के लिए सारी बातें पहले से सोचकर मत जाओ, इलाके में पहुंचकर वहां के हालत देखो, कलाकारों को मंथन में डालो, और इन्हीं परिस्थितियों से जो प्रेरणा मिले और जो कहानी उत्पन्न होती नजर आए, बस उसके सहारे आगे बढ़ते चलो, यही एक रास्ता है।